लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के उप याजकों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि याजक वर्ग सुसमाचार और निर्धनों के प्रति सत्यनिष्ठ रहते हुए संपूर्ण कलीसिया के लिए एक स्फूर्तिदायक प्रतीक बने। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। कुछ ऐसे भी भजन हैं जिनमें प्रभु की कृपा, उनके अनुग्रह और अनुकंपा की याचना की गई है। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं को जीवन से दूर रखें। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वह तुम्हारा पैर फिसलने न दे, तुम्हारा रक्षक न सोए। नहीं, इसराइल का रक्षक न तो सोता है और न झपकी लेता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। न तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और न रात में चंद्रमा से। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम कहां भी जाओगे, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, अभी और अनंत काल तक। श्रोताओं, ये था स्तोत्र ग्रंथ का 121वां भजन। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम में हमने इसी भजन की व्याख्या की थी। इस बात का हम सिंहावलोकन कर चुके हैं कि तीर्थ यात्रियों का लक्ष्य प्रभु का पर्वत और प्रभु का पवित्र शहर जेरूसलम था, जहां से वे प्रभु के वैभव पूर्ण कार्यों को निहारते हुए उनकी स्तुति करते थे तथा अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाकर अपने रक्षक प्रभु ईश्वर को पुकारते थे। भजनकार मनुष्यों को स्मरण दिलाता है कि इसराइल का ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए छाया की तरह उनके दाहिने रहता है। अस्तु उन्हें निश्चिंत रहना चाहिए, इसलिए कि उन्हें न तो दिन में सूर्य से कोई हानि होगी और न ही रात में चंद्रमा से। मंदिर का याजक बाहर निकलकर लोगों का स्वागत करता था और इन शब्दों से उन्हें आश्वस्त करता था। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम कहां भी जाओगे, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, अभी और अनंत काल तक।
करे तुम्हारी
और अब आइए स्तोत्र ग्रंथ के 122वें भजन पर दृष्टिपात करें। यह भजन दाऊद का एक भजन है और यह भी तीर्थ यात्राओं के अवसर पर ही गाया जाने वाला एक गीत है। भजन इस प्रकार है, मैं यह सुनकर आनंदित हो उठा, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। जेरूसलम, अब हम पहुंचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। एक सुसंगठित नगर के रूप में जेरूसलम का निर्माण हुआ है। यहां इसराइल के वंश, प्रभु के वंश आते हैं, जैसा कि इसराइल को आदेश मिला है। यहां न्याय के आसन, दाऊद के वंश के आसन संस्थापित हैं। जेरूसलम के लिए शांति का यह वरदान मांगो, जो तुझको प्यार करते हैं वे सुखी हों। तेरी चार दीवारी में शांति बनी रहे, तेरे भवनों में सुरक्षा हो। मेरे भाई और मित्र यहां रहते हैं, इसलिए कहता हूं तुझमें शांति बनी रहे। हमारा प्रभु ईश्वर यहां निवास करता है, इसलिए मैं तेरे कल्याण की मांग करता हूं। श्रोताओ, 120वां भजन जेरूसलम की शांति के लिए तरसता है। वस्तुतः जेरू शालोम का अर्थ है शांति की जगह। जेरू यानी जगह और शालोम का अर्थ है शांति। यहां 122वें भजन में हमारी मुलाकात उन तीर्थयात्रियों से होती है जो जेरूसलम पहुंचने की प्रतीक्षा में नहीं है, अपितु जो जेरूसलम पहुंच चुके हैं, शांति की जगह पहुंच चुके हैं। इसीलिए इस भजन के प्रथम पद हैं, मैं यह सुनकर आनंदित हो उठा, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। जेरूसलम, अब हम पहुंचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। श्रोताओ, हालांकि भजनकार ने पहला पद एक वचन में रचते हुए कहा है कि मैं यह सुनकर आनंदित हो उठा, तथापि यह मैं संपूर्ण तीर्थयात्री दल का प्रतिनिधित्व करता है। भजनकार संपूर्ण तीर्थयात्री समुदाय की ओर से बोल रहा था। तीर्थ यात्री प्रसन्न थे, आनंद से परिपूर्ण थे, इसलिए कि उन्होंने जेरूसलम के फाटकों में प्रवेश कर लिया था। वे सबके सब मिलकर मानो कह रहे हों, चलो हम सब मिलकर प्रभु के निवास तक चलें। प्रभु येसु ने भी कहा है, जहां दो या तीन मेरे नाम पर एकत्रित होंगे मैं उनके बीच अवश्य निवास करूंगा। उन्होंने जेरूसलम के फाटकों में प्रवेश कर लिया था। उनके हृदय प्रसन्न चित्त थे और उनका रोम रोम प्रभु ईश्वर का स्तुतिगान कर रहा था। तीर्थयात्री प्रसन्न थे, वे इस तथ्य के प्रति सचेत थे कि जेरूसलम के फाटकों में प्रवेश करना एक विशेष अधिकार था। यह उनका बड़ा सौभाग्य था कि वे उस जगह तक पहुंच गए थे जहां सदियों से उनके पूर्वज स्वर्ग और धरती के सृष्टिकर्ता जीवंत ईश्वर की आराधना करते आए थे तथा उनके आदर में बलि अर्पित करते रहे थे। इसीलिए भजनकार कहता है, यहां इसराइल के वंश, प्रभु के वंश आते हैं, जैसा कि इसराइल को आदेश मिला है। यहां न्याय के आसन, दाऊद के वंश के आसन संस्थापित हैं। श्रोताओ, स्तोत्र ग्रंथ का 122वां भजन हमें इस तथ्य पर चिंतन के लिए बाध्य करता है कि हमारा विश्वास केवल आध्यात्मिक स्तर तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। मानव मन को किसी प्रकार की शारीरिक गतिविधि की जरूरत होती है, शारीरिक रूप से कुछ करने की जरूरत होती है। इसीलिए तीर्थयात्री गाते बजाते और ईश्वर की स्तुति करते तीर्थ स्थल तक पहुंचते हैं। मनुष्य को आध्यात्मिक विश्वास के साथ साथ बाह्य चिन्हों की भी जरूरत होती है, इसीलिए हम संस्कारों को ग्रहण करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, प्रभु के चरणों में अपनी प्रार्थनाओं के साथ साथ धूप लोबान फूल फल और अन्य बलि अर्पित करते हैं। प्राचीन व्यवस्थान के युग में पशुओं की बलि अर्पित की जाती थी, किंतु आज हम ख्रिस्तीय पशु बलि अर्पित नहीं करते, इसलिए कि प्रभु येसु ख्रीस्त ने अपने क्रूस बलिदान द्वारा सभी बलियों की निरर्थकता को दूर कर दिया तथा मानव जाति के लिए एक ही बलिदान स्थापित किया है, जिसकी स्मृति ख्रिस्तीय याजक मिस्सा बलिदान में दिन प्रतिदिन किया करते हैं। प्रभु येसु ख्रीस्त के 12 प्रेरित इसराइल के 12 कुलों के प्रतीक हैं, जिन्हें प्रभु येसु ख्रीस्त ने एकता और शांति का वरदान देकर उसे जग के कोने कोने में फैलाने का आदेश दिया था। संत योहन रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय के 16वें और 17वें पदों में यीशु के शब्दों को हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो। तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। श्रोताओ, एक दूसरे से प्रेम ही एकता और शांति का स्रोत है।
सुनो मेरा उपदेश नया, नहीं सच है मेरी बात करो यकीन। एक दूजे के पांव सदा
बोले प्रभु
जैसा के मैंने।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन के संत मार्था प्रार्थनालय में बृहस्पतिवार को ख्रिस्त्याग अर्पित करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने कलाकारों के लिए प्रार्थना की तथा सभी ख्रिस्तों को याद दिलाया कि वे ईश्वर की चुनी हुई प्रजा के हिस्से हैं। पास्का के चौथे सप्ताह के बृहस्पतिवार को ख्रिस्त्याग अर्पित करते हुए संत पापा ने उन कलाकारों की याद की जिन्होंने उन्हें धन्यवाद देते हुए पत्र लिखा है। संत पापा ने कहा, मैं प्रभु से याचना करता हूँ कि वे उन्हें आशीष प्रदान करें, क्योंकि कलाकारों के माध्यम से हम सुंदरता को समझते हैं और बिना सुंदरता के हम सुसमाचार को नहीं समझ सकते। बुधवार को लाइव प्रसारण के माध्यम से धर्म शिक्षा देने के उपरांत संत पापा ने कहा था, कलाकार ही हैं जो इस मौन कराह को व्यक्त करते हैं जो हर श्रेष्ठ जीव को दबाती और सबसे बढ़कर यह पुरुषों एवं स्त्रियों के हृदय से निकलती है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर के सामने एक याचक है। अपने उपदेश में संत पापा फ्रांसिस ने प्रेरित चरित से लिए गए पाठ पर चिंतन किया जिसमें पौलुस पिसिदिया से अंतियोकिया पहुंचते हैं। वे वहां के सभागृह जाते और इसराइली लोगों का इतिहास बतलाते हैं तथा यीशु की घोषणा हमारे मुक्तिदाता के रूप में करते हैं। संत पापा ने कहा, जब पौलुस नई धर्म शिक्षा के बारे बतलाते हैं तब वे मुक्ति के इतिहास के बारे बोलते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यीशु की ओर बढ़ने में एक आग्रह का, चुने जाने का और व्यवस्थान का इतिहास है। ईश्वर और उनकी प्रजा के लंबे इतिहास पर प्रकाश डालते हुए संत पापा ने कहा, प्रभु ने अब्राहम को चुना और अपने लोगों के साथ यात्रा की। पौलुस इतिहास की शुरुआत यीशु से नहीं करते, क्योंकि ख्रिस्तियता मात्र धर्म सिद्धांत नहीं है बल्कि एक इतिहास भी है जो अपने धर्म सिद्धांत को आगे ले चलता है। संत पापा ने कहा कि ख्रिस्तियता सिर्फ नैतिकता या सदाचारी सिद्धांतों से नहीं बना है और न ही व्यक्ति अपने नैतिक दृष्टिकोणों के कारण ख्रिस्तीय है, ख्रिस्तियता इनसे बढ़कर है। संत पापा ने कहा कि ख्रिस्तीय समाज के उत्कृष्ट लोग भी नहीं है। ख्रिस्ते होने का अर्थ है उस समुदाय का सदस्य होना जो ईश्वर द्वारा स्वतंत्र रूप से चुना गया है। यदि हम में यह चेतना नहीं है, एक समुदाय का हिस्सा होने का ज्ञान नहीं है, तब हम विचारधारा के ख्रिस्ते मात्र रह जाएंगे, सच्चे ख्रिस्ते नहीं। संत पापा ने खेद प्रकट किया कि कई बार हम भेदभाव की भावना में गिर जाते हैं। उन्होंने समाज में उत्कृष्ट होने के दृष्टिकोण की निंदा की और कहा कि यह ख्रिस्तियों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है जो उन्हें ईश्वर की प्रजा होने की चेतना को खोने की ओर ले जाता है। संत पापा ने विश्वासियों को निमंत्रण दिया कि वे ईश्वर की प्रजा होने के प्रति हमेशा सचेत रहें, मुक्ति के इतिहास को हस्तांतरित करें और यादों को बनाए रखें। इब्रानियों के पत्र का लेखक कहता है, अपने पूर्वजों की याद करें। उन्होंने कहा कि ख्रिस्तों के विचलित होने का सबसे मूल कारण है यादों की कमी, कि वे एक प्रजा हैं। यही वह बिंदु है जहां धर्म सिद्धांतवाद, नैतिकतावाद और उत्कृष्टतावाद का उदय होता है, जबकि ईश्वर की प्रजा एक प्रतिज्ञा, एक व्यवस्थान के अनुसार चलती है जिसको स्वयं उसने नहीं बनाई, बल्कि वह जानती है कि वह ईश्वर की विश्वासी पौत्र प्रजा है जो पूरी तरह विश्वस्त और अपने विश्वास में अचूक है। संत पापा फ्रांसिस ने परमधम पीठ संत प्रकरण परिषद द्वारा प्रस्तावित 5 नए ईश सेवकों की आज्ञाप्तियों को अनुमोदन दे दिया है। 5 मई को संत पापा फ्रांसिस ने परमधम पीठ संत प्रकरण परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल अंजेलो बेचू से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान संत पापा ने 5 नए ईश सेवकों के विरोचित सद्गुणों को पहचानते हुए उनकी आज्ञाप्तियों को अनुमोदन दिया। उनके नाम इस प्रकार है, ईश सेवक फ्रांचेस्को करूसो जो कतंजारो महाधर्म प्रांत के पुरोहित थे, उनका जन्म इटली में 7 दिसंबर 1879 को और निधन 18 अक्टूबर 1951 को हुआ था। ईश सेवक कर्मेलो दी पाल्मा जो बारी महाधर्म प्रांत के पुरोहित थे, उनका जन्म इटली के बारी में 27 जनवरी 1876 को और निधन 24 अगस्त 1961 को हुआ था। ईश सेवक फ्रांसिस बरे का गुरेन जो मोस्ट होली रिडीमर धर्म समाज के पुरोहित थे, उनका जन्म स्पेन में 21 अगस्त 1881 को और निधन स्पेन में 7 अक्टूबर 1957 को हुआ था। ईश सेवक मरिया देला कंसेप्शन बुर्क के गुरेन एक लोकधर्मी महिला थीं। उनका जन्म स्पेन में 27 नवंबर 1905 को और निधन 13 मई 1927 को हुआ था। और ईश सेवक मत्तेओ फरीना एक लोकधर्मी पुरुष थे। उनका जन्म इटली में 19 सितंबर 1990 को और निधन 20 अप्रैल 2009 को हुआ था। इस बीच वैटिकन में कोरोना वायरस संक्रमण का 12वां मामला सामने आया है। वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने 6 मई को एक विज्ञप्ति जारी कर इस बात की पुष्टि दी कि वैटिकन में कोरोना वायरस से 12वां व्यक्ति संक्रमित हुआ है। माता दिवस जिसको 10 मई को मनाया जाता है, इसके उपलक्ष्य में यूनिसेफ ने याद किया है कि कोविड 19 महामारी के समय में कुल 116 मिलियन बच्चों का जन्म होगा। महामारी के समय गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य सुविधा संबंधी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यूनिसेफ ने सरकारों एवं स्वास्थ्य विभाग से अपील की है कि वे जीवन रक्षा सेवा को बढ़ावा दें। इटली के लिए यूनिसेफ के अध्यक्ष फ्रांसेस्को समालेंगो ने कहा, माता दिवस के उपलक्ष्य में जिसको 128 देशों में मनाया जाता है, यूनिसेफ ने याद किया है कि कोविड 19 महामारी के दौरान करीब 116 मिलियन बच्चे जन्म लेंगे। ये शिशु कोविड 19 के समय में 40 सप्ताहों के बीच में जन्म ले सकते हैं, जब विश्व भर में स्वास्थ्य सुविधाओं एवं मेडिकल आपूर्ति की गंभीर चुनौतियों का सामना किया जा रहा है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।